ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के कैलगरी पहुंच गए हैं। वे कनानास्किस में G7 शिखर बैठक में शामिल होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर वहां की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी शिखर बैठक से अलग कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री G7 और आमंत्रित देशों के नेताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगे।
G7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। इसके सदस्य वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर वर्ष G7 शिखर सम्मेलन में मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत को G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता रहा है। भारत ने पिछले शिखर सम्मेलनों में हमेशा ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों को सामने लाया है। पिछले वर्ष इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए अन्य आमंत्रित देशों के साथ भाग लिया था। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ईरान की राष्ट्रीय प्रसारण एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग इसराइल के हमले की चपेट में आ गया है। दोनों देशों के एक दूसरे के रिहायशी और बुनियादी सुविधा केंद्रों पर हमले से संघर्ष बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सभी लोगों से तेहरान छोड़ने का अनुरोध किया है। हालांकि राष्ट्रपति ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। तेहरान में करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। इस बीच संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने ईरान के सबसे बड़े यूरेनियम संवर्धन केंद्र को काफी नुकसान होने की पुष्टि की है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच G7 नेताओं ने इसराइल और ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। G7 के नेताओं ने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। एक संयुक्त वक्तव्य में G7 ने क्षेत्रीय तनावों के बीच नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरानी संकट को हल करने से मध्य पूर्व में व्यापक शत्रुता को कम करने में मदद मिल सकती है, जिसमें गाजा में युद्धविराम कराने की दिशा में प्रयास भी शामिल है। ईरान और इसराइल के बीच जारी तनाव और हमलों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर साझा किए हैं। इनमें टोल फ्री नंबर 1800-118-797 और 911-2301-2113 शामिल हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और कहा है कि यह हमला वित्तीय सहायता के बिना संभव नहीं हो सकता। FATF शायद ही कभी आतंकवादी हमलों की निंदा करता है और पिछले दशक में ये केवल तीसरी बार है जब संस्था ने आतंकवादी हमले की निंदा की है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि कल रात तक अहमदाबाद विमान दुर्घटना के 125 शवों की पहचान DNA टेस्ट के जरिए की गई है। इनमें से 83 शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत की महिला टीम आज और कल अर्जेंटीना की महिला टीम के साथ खेलेगी। कड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद भारत अब अर्जेंटीना के साथ शानदार प्रदर्शन करके जीत हासिल करना चाहेगा। भारत इस समय 9 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है और अर्जेंटीना के साथ कड़े मुकाबले की उम्मीद है। अर्जेंटीना अंक तालिका में 2रे स्थान पर है। सरकार ने देश के अलग अलग भागों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये प्रशिक्षण स्कूल देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री गडकरी ने कहा कि देश में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 8 जिलों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार बक्सर जिले में सबसे अधिक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।